मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 9 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट के विषय के रूप में हम लोग कल और उससे भी पहले जो कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और वह विषय है बैलेंस इन लाइफ। दोस्तों एक सच पूछे तो यह बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जिंदगी के जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे, प्रकृति के जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे, आपको बैलेंस की मौजूदगी दिखाई दे जाएगी। बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। और सच पूछिए तो मैं बैलेंस इन लाइफ के बारे में आपको कोई टिप्स देने नहीं जा रहा हूं, वो सबसे आसान काम भी होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि वह दृष्टि आपको मिल जाए। जिस दिन आपको वह दृष्टि मिल जाएगी कि आप हर जगह उस बैलेंस को देख पा रहे हैं, आप मानकर चलिए कि बस बैलेंस इन लाइफ आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं उसी संदर्भ में एक अलग तरीके की बात की चर्चा करने जा रहा हूं जो डेफिनेटली बैलेंस इन लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। याद कीजिए बहुत पहले मैंने आपको एक तराजू का उदाहरण दिया था, है ना, भिंडी और गोल्ड को लेकर। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब हम बैलेंस बनाना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो दूसरा पलड़ा है, तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो जो दूसरा पलड़ा है उस पर वजन कितना रखा गया है। मान लीजिए कि भिंडी मैं अपनी मुट्ठी से निकालता हूं, है ना, मेरे सामने भिंडियां रखी हुई और मैं मुट्ठी में भर भर करके भिंडी को तौल रहा हूं, तो मैं कितनी मुट्ठियां भिंडी तौलने के लिए डालूंगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे साइड में जो वजन रखा हुआ है वह कितना है। एक पाव है, आधा किलो है, एक किलो है, या पांच किलो है, या एक या दस किलो है, उसी हिसाब से मैं भिंडियां डालूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वहां तो दस किलो है तो मुझे फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, फिर मुट्ठी मुट्ठी भर डालने से बात नहीं बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें हर जगह पर यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज डालनी है तो कितनी डालनी है, और अगर कोई चीज निकालनी है तो कितनी निकालनी है। और यह जानना इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे साइड में जो बाट रखा हुआ है, जो वजन रखा हुआ है, वो कितना है। तो मित्रों अब इस वजन के रूप में मैं आपके सामने आज जीवन के चार मुख्य स्तंभों के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो चार मुख्य स्तंभ हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारी पूरी की पूरी जिंदगी चार स्तंभों पर खड़ी है तो वो चार स्तंभ कौन कौन से हैं। दोस्तों ये मैं स्तंभ की बात कर रहा हूं तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मैं कहीं जो जिस वजन की बात कर रहा था उससे अलग जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब हम जीवन के बैलेंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें स्तंभों की तरफ ही देखना पड़ता है। स्तंभों की तरफ इसलिए देखना पड़ता है, या कह लीजिए खंभों की तरफ देखना पड़ता है, वो इसलिए देखना पड़ता है फ्रेंड्स कि जो जीवन का बैलेंस है, मैंने आपको बताया कि एक तो आउटर सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनसे प्रभावित होता है, हम ठोकर खाए और लड़खड़ाने लगे, ये आउटर सर्कमस्टेंसेस था, राइट। हमें कहीं कड़वा अनुभव मिला, किसी के साथ बहुत खराब व्यवहार मिला और हमारा आंतरिक जगत लड़खड़ा गया, है ना, मन में आक्रोश भर गया, नकारात्मक सोच आने लगी, क्रोध पैदा होने लगा, तो ये आंतरिक लड़खड़ाहट है। तो बाह्य लड़खड़ाहट और आंतरिक लड़खड़ाहट, जहां तक बाहरी लड़खड़ाहट का सवाल है फ्रेंड्स, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है, उसको हम संभाल लेते हैं, हाँ, लेकिन अगर आंतरिक लड़खड़ाहट का असर, बाहरी लड़खड़ाहट का असर यदि आंतरिक लड़खड़ाहट का कारण बनने लगा, वह हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ठोकर खाकर लड़खड़ाया, ठीक है, मैं संभल गया, लेकिन मुझे यह पता लग जाए कि वो जो जिससे मैं ठोकर खाया हूं वो जानबूझकर किसी ने मुझे गिराने के लिए वहां रखा था, और मुझे पता लग जाए कि यह जानबूझकर षड्यंत्र रचने वाला कौन था, अब क्या होगा। अब आप देखिए कि जैसे ही मुझे नाम पता लगेगा या यह सच्चाई पता लगेगी कि वो किसी ने जानबूझकर किया था, तो बाहरी लड़खड़ाहट तो जो हुई सो हुई ही, अब आंतरिक लड़खड़ाहट भी हो जाएगी, मेरा मन कड़वाहट से भर जाएगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि बाहरी लड़खड़ाहट और आंतरिक लड़खड़ाहट ये दोनों मिलकर मेरे जीवन के बैलेंस को बिल्कुल ही गड़बड़ कर देंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब बाहरी लड़खड़ाहट होती है तो उसे हमारा आंतरिक वजन संभाल लेता है। जब आंतरिक लड़खड़ाहट होती है तो नो डाउट कई बार ऐसा भी होता है कि बाहरी वजन उसे संभाल लेता है, यानी बैलेंस कर देता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो आंतरिक लड़खड़ाहट की होती है, कि जब हम अंदर से डिस्टर्ब हैं, अपना संतुलन खो चुके हैं, तो उसे कैसे बनाकर रखें। क्योंकि ज्यादातर एक दिन में कई कई बार यहां तक कि हम आंतरिक रूप से ही अपने संतुलन को गड़बड़ाते हैं, बाहरी लड़खड़ाहट की हमें ज्यादा परवाह नहीं होती। हमारे शरीर में इतनी इंटेलिजेंसिया है, हमारा दिमाग इतनी तेजी के साथ काम करता है कि हमारे शरीर को बैलेंस में ले आता है। लेकिन जो आंतरिक लड़खड़ाहट है दोस्तों, इसकी टेक्निक हमको नहीं मालूम। और मेरा उद्देश्य अभी मैं जो चार खंभों की बात कर रहा हूं वो इसी आंतरिक लड़खड़ाहट को सहारा देने वाले तत्वों की चर्चा करना है, कि वो चार ऐसे कौन से खंभे हैं कि यदि हम उन चार खंभों को पकड़ लेते हैं तो चाहे कितने भी आंधी तूफान अंतर जगत में क्यों न उठे, हम उखड़ेंगे नहीं, हमारे पैर नहीं उखड़ेंगे, हम बहकर उसके साथ चले नहीं जाएंगे, हम खत्म नहीं हो जाएंगे। नो डाउट कि थोड़े समय के लिए भय पैदा होगा, मन में आशंकाएं भी पैदा होंगी, लेकिन हम संभल जाएंगे क्योंकि तूफान तो हमेशा रहता नहीं है। तो दोस्तों वो चार खंभे कौन से हो सकते हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और अपने अपने ढंग से आप देखें कि यदि उसे अपना सकते हैं तो आप अपनाए भी, क्योंकि बिना अपनाए तो बात नहीं बनेगी। दोस्तों उसमें जो सबसे पहला जो खंभा है, जो स्तंभ है, लौह स्तंभ है, वो ये है दोस्तों कि जो जीवन है वो सर्वोपरि है। जीवन से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी दूसरा नहीं है। और याद रखिए कि जब मैं जीवन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं अपने जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, सबके जीवन की बात कर रहा हूं। यदि मेरा जीवन मेरे लिए सर्वोपरि है तो आपका भी जीवन आपके लिए सर्वोपरि है। यदि मैं अपने जीवन को इतनी वैल्यू दे रहा हूं तो मुझे आपके जीवन को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। यह दोनों चीजें हैं। और जब मैं जीवन को वैल्यू देने लगूंगा तो स्वाभाविक है कि फिर मेरे लिए सभी जीवन अमूल्यवान हो जाए, अमूल्य हो जाएंगे, मेरे लिए सारे के सारे जीवन मूल्यवान हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही जीवन खत्म होता है, चाहे मैं अपने हाथ से अपना जीवन खत्म करूं या कोई दूसरा मेरे जीवन को खत्म कर दे या वो अपने कारण अपना समय पूरा होने पर खत्म हो जाए, जैसे ही जीवन खत्म होता है मित्रों, याद रखिए कि हमारे लिए ये दुनिया शून्य हो जाती है। फिर हम नहीं जानते कि हम कहां हैं, कहां नहीं है, कौन है, आगे क्या होगा, किसी ने आज तक नहीं बताया है। तो याद रखिए कि ये जीवन इतना मूल्यवान है और इतना सर्वोपरि है कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हमें इसकी रक्षा करनी ही करनी है, सर्वोपरि। और न केवल अपने ही जीवन की रक्षा करनी है बल्कि दूसरों के जीवन का भी उतना ही सम्मान करना है, उसे उतना ही वैल्यूएबल मानना है। दोस्तों जैसे कहा जाता है कि आप उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप वापस दे सकें। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो देने की हैसियत भी होनी चाहिए। सामान्य जीवन में तो हम इसी व्यवहार को लेकर चलते हैं ना। तो यदि मैं किसी का जीवन लेता हूं तो क्या मैं किसी को जीवन दे भी सकता हूं? और यदि मैं नहीं दे सकता तो मुझे लेने का हक क्या है? यहां तक कि मुझे खुद अपना भी जीवन लेने का हक नहीं है, क्योंकि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन समाज का है, ये जीवन प्रकृति का है। मेरे पास तो केवल मॉर्टगेज के रूप में रखा हुआ है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मैं केवल उसका रखवाला हूं। मैंने कुछ नहीं किया इस जीवन के लिए। शुरू में मेरे माता पिता ने किया, इसके बाद समाज ने किया, इसके बाद लोगों ने किया, उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, प्रकृति ने किया, उसने हवा दिया, उसने रोशनी दी, सूरज की ऊर्जा दी, सब कुछ तो उसने दिया, मैंने क्या किया उसमें? मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक काम किया है, उसे स्वीकार किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। और अगर मैंने उसे स्वीकार किया है तो यह सामाजिक धरोहर है और मुझे इस सामाजिक धरोहर को संभाल कर रखना है, कबीर दास की तरह कि जस की तस धर दीनी चदरिया। ये मेरी चदर नहीं है कि मैं इसे तार तार करूं, दागदार करूं, नॉट एट ऑल। यह समाज की चद्दर है, यह प्रकृति की चद्दर है, यह दूसरों की धरोहर है। इसलिए कभी इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि यह मेरा है और इसके साथ मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव कर सकता हूं। नॉट एट ऑल। कम से कम मैं इस तानाशाही रवैये को अपने ही जीवन के प्रति, अपने ही तानाशाही रवैये को दोस्तों सही नहीं मान पाता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं अपने ही वजह से नहीं हूं। आज मैं जो ऑडियो पर आप लोगों से बात कर रहा हूं, किसकी वजह से बात कर रहा हूं? आप लोगों की वजह से बात कर रहा हूं। आप लोग इसे पसंद करते हैं, आप लोग इसे प्यार देते हैं, आप लोगों के जीवन में इससे कुछ हो जाता है, तो मैं उस वजह से ये कर रहा हूं, अपनी वजह से नहीं कर रहा हूं। इस बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। इसीलिए मैं जो अपनी शक्ति है वो दूसरों में देखता हूं, आप सब में देखता हूं। मुझे लगता है कि जिस दिन जीवन के प्रति हमारी यह दृष्टि पैदा हो जाती है, एक बहुत बड़े खंभे का हम आलिंगन कर लेते हैं, एक बहुत ही मजबूत खंभा, और ऐसा मजबूत खंभा जो दुखद से दुखद क्षणों में भी आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आने देगा। दुखद क्षणों में ही गलत विचार आते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप समझ, आपने मान लिया कि भैया ये चीज मेरी है ही नहीं, तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, इसको तो खत्म नहीं कर सकता, ये तो मेरी नहीं है। दूसरे का भी मैं खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वह भी मेरी नहीं है, मेरी हो या न हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि यह मूल्यवान है, तो जो मूल्यवान है, मूल्यवान को आप नष्ट नहीं कर सकते। जो सर्वोपरि है उसे आप निम्नोपरि नहीं बना सकते, उसे कैसे आप दो कौड़ी का बना देंगे? जो सर्वोच्च है, जो सर्वोत्तम है, आप कैसे उसको निकृष्टतम बना करके और खत्म कर देंगे? संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो अगर यह थॉट आपके दिमाग में आ गया तो सबसे बड़ी बात यह होगी दोस्तों कि असंतुलन की भयानकतम क्षणों में भी आपकी कोशिश होगी कि नहीं, मुझे अपना संतुलन प्राप्त करना ही करना है, आप हार नहीं मानेंगे। और यदि आपके मन ने हार नहीं मानी तो मानकर चलिए कि वो संतुलन की तलाश शुरू कर देगा, चाहे कितनी भी कठिन घड़ियां क्यों न हो, वह संतुलन की यात्रा पर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने वही हथियार डाल दिए मित्रों, शुरुआत में ही हथियार डाल दिए, फिर संतुलन साधना मुश्किल होगा। दोस्तों वक्त नहीं है तो आज मैं इसी एक स्तंभ की बात कर रहा हूं, शेष स्तंभों की बात आपसे मैं कल करूंगा। तो अब आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।